First Thessalonians chapter 5, please.
Thessalonikiyon ki pehli patri mein hum aayenge aur uske 5ve adhyay.
First Thessalonians and chapter 5.
Thessalonikiyon ki pehli patri uska 5va adhyay.
Verse 1.
Aur pad 1.
But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा, जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे उन पर भी विनाश आ पड़ेगा और बच ना सकेंगे.
The second epistle, chapter 2.
दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय.
Verse 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of the Lord is at hand.
दूसरा थिस्सलुनीकियों दो उसका एक और दो. हे भाइयों, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके पास अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित ना होना और ना घबराना.
The end of verse 2, brother, in the Hindi scriptures there, what is the expression used?
Prabhu ka din. You mean the day of the Lord?
Yeah.
Prabhu ka din.
It says the day of the Lord.
Day of the Lord.
Yeah, that's good. In the English version, it says the day of Christ, which is wrong. Day of the Lord. Okay. May the Lord bless his word to us.
Prabhu in vachanon ko hamare jeevan mein aashish karke de.
Paul did not have very long with the saints at Thessalonica.
थिस्सलुनीकियों के विश्वास के साथ प्रेरित पौलुस ज्यादा समय नहीं बिता पाया है.
It really was an evidence that the Lord takes care of his assembly.
ये इस सत्य को हमारे सामने लाता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया का देखभाल करता है.
Because of persecution, he had to move on.
हम जानते हैं सताव आने के कारण प्रेरित पौलुस को आगे बढ़ना पड़ा.
And yet very clearly, though he had only been with them a short time, he had discussed prophecy with them.
तो भले ही वो कुछ समय उन लोगों के साथ था, फिर भी उस समय में उसने उनके साथ भविष्यवाणी के विषयों के से बातें की.
And there were now problems concerning prophecy in the church of Thessalonica.
अब थिस्सलुनीकिया के कलीसिया में भविष्यवाणी के विषय में कुछ समस्याएं खड़ी हो गई थी.
You see, some Christians seem to have the view that they don't need to get involved in prophecy.
क्योंकि कुछ मसीह ऐसा विचार रखते हैं कि उन्हें भविष्यवाणी के विषय में ध्यान देने की जरूरत नहीं है.
They see the important thing as being saved.
वो ये सोचते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है उद्धार पाना.
Being there at the Lord's Supper.
और प्रभु भोज में शामिल होना.
Many of you call it Lord's Table, but that's a different scriptural expression.
आप प्रभु का मेज करके आप लोग कहते हैं, वो एक अलग शब्द प्रयोग है.
Lord's table is 1 Corinthians 10.
पहला कुरिन्थियों 10 में प्रभु का मेज के बारे में कहा गया है.
Lord's supper is 1 Corinthians 11.
और पहला कुरिन्थियों 11 में प्रभु भोज के बारे में कहा गया है.
So many Christians, they think, well now, so long as I'm saved and I go to the Lord's supper, that's it.
कई विश्वासी ये सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो चुका है, अब मैं प्रभु भोज में शामिल हो गया, बस यही काफी है.
Prophecy, that's complicated.
जो भविष्यवाणी की बातें हैं ये तो बहुत कठिन है.
Prophecy is like the icing on top of the cake.
हाँ, ये जो prophecy है, हम जो केक के ऊपर जो मलाई लगती है उसके समान ऐसा सोचते हैं.
Well, Paul thought it was important.
पौलुस कहता है ये महत्वपूर्ण है.
Because he took a first generation assembly saved from idolatry.
क्योंकि उसने पहले सदी की जो कलीसिया को है मूर्ति पूजा से बाहर निकलने में सहायता की.
And even though his time was short, he taught them prophetic things.
और उसके पास उस कलीसिया के साथ समय कम था, फिर भी उसने भविष्यवाणी के विषय में उनको सिखाया.
Now I want you just to follow this with me. Go back to chapter 1 of the first letter.
हम पहला थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय में आएंगे, पहला पद में.
And he says in verse 2,
और उसके दूसरे पद में ऐसा लिखा गया है,
We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers.
हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हुए तुम सबके लिए परमेश्वर का सदैव धन्यवाद करते हैं.
Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father.
हम तुम्हारे विश्वासपूर्ण कार्य, प्रेमपूर्ण परिश्रम और अपने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी आशा की दृढ़ता को अपने परमेश्वर और पिता के सम्मुख निरंतर ध्यान में रखते हैं.
What is he remembering?
वो किस बात को ध्यान में रखता है?
Your work of faith.
तुम्हारा विश्वासपूर्ण कार्य.
Labor of love.
प्रेमपूर्ण परिश्रम.
Patience of hope.
प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी आशा की दृढ़ता.
Faith.
विश्वास.
Love.
प्रेम.
Hope.
आशा.
These are the three things that he teaches the Corinthians are going to abide.
और कुरिन्थियों के विश्वासियों को सिखाता है कि ये तीन बातें हमेशा रहेंगी.
The end of 1 Corinthians 13.
और पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय के अंतिम में हम पढ़ते हैं.
Faith, love and hope.
प्रेम, हम जानते हैं विश्वास, प्रेम और आशा.
These should be features of a local assembly of God's people.
ये मसीह के लोग जहां इकट्ठे होते हैं वहां की स्थानीय कलीसिया के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं.
Now come to the second epistle.
आप देखिए दूसरी पत्री में आइए.
Verse number 3 of chapter 1.
पहला अध्याय उसका तीसरा पद को देखिए.
We are bound to thank God always for you brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth.
भाइयों तुम्हारे लिए तो हमें सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ गया है और तुम में से हरेक का प्रेम परस्पर और भी बढ़ता जाता है.
Now he's writing the second letter.
अब ये दूसरी पत्री लिख रहा उनको.
He mentions their faith.
उनके विश्वास के बारे में कहता है.
He mentions their love.
यहां पर उनके प्रेम के बारे में कहता है.
Where's the hope?
आशा कहां चला गया?
It's gone. It's not there.
गायब हो गया, नहीं है वहां.
They have lost their hope.
उनकी आशा वो खो गए हैं.
I'm not making this up, it's there in the Bible.
मैं ये कह नहीं कह रहा, मैं अपने स्वयं से ये नहीं कह रहा हूं, ये तो बाइबल में लिखी हुई बात आपके सामने रख.
Why have they lost their hope?
वो अपनी आशा को क्यों खो दिए?
Because they don't know the difference between the day of Christ and the day of the Lord.
क्योंकि वो मसीह के दिन और प्रभु के दिन का फर्क को समझ नहीं पा रहे हैं.
They've been taught it by the apostle.
प्रेरितों ने उनको सिखाया है.
But in the meantime, false teachers have come and taught them something else.
लेकिन कुछ झूठे शिक्षक आ गए थे और उनको कुछ और सिखाकर चले गए.
You see why prophecy is so practical and so important.
इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भविष्यवाणी की बातें प्रायोगिक हैं और महत्वपूर्ण हैं.
These Christians in Thessalonica had been taught by false prophets, false teachers, that they were going to go through the tribulation.
और थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों को गलत झूठे शिक्षकों ने सिखाया कि तुम उस ट्रिबुलेशन के पीरियड से गुजरने वाले हो.
एंड इंस्टेड ऑफ द ग्लोरियस एक्सपेक्टेशन दैट आवर बेलव्ड ब्रदर वाज टीचिंग अस अबाउट दिस मॉर्निंग,
और जैसे हमारे भाई आज हमारी जो धन्य आशा उसके बारे में सिखा रहे थे,
ऑल दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ इज द रॉथ एंड द जजमेंट ऑफ गॉड फॉलिंग अपॉन देम.
अब वो लोगों के सामने परमेश्वर का न्याय को गिरते हुए उन्होंने देखा.
Faith, hope, faith, love, and hope in chapter 1 of the first letter.
हम पढ़ते हैं विश्वास, प्रेम और आशा पहले पत्री में उनके बारे में लिखा गया है.
The hope is lost in the second letter.
लेकिन दूसरे पत्री में जब आते हैं हम पाते हैं उन्होंने अपनी आशा को खो दिया है.
Now go back to the first letter.
पहले पत्री में फिर आए वापस.
Chapter 1.
पहला अध्याय.
See what Paul had taught them.
पौलुस ने उनको क्या सिखाया?
Now we're going to look at the words that the Holy Spirit teaches.
अब देखिए पवित्र आत्मा जिन शब्दों को उनकी शिक्षा उन्हें देता है वो हम देखने जा रहे हैं.
Look at verses 9 and 10.
देखिए 9 और 10 को.
They themselves show of us what manner of entering in we had unto you.
वे स्वयं ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे मध्य हमारा कैसा स्वागत हुआ था.
Right, now pay good attention please.
ध्यान दीजिए.
How ye turned to God from idols.
तो मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर कैसे फिरे.
To serve the living and true God.
कि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो.
To wait for His Son from heaven.
तथा स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो.
Whom He raised from the dead.
जिसे उसने मृतकों से जिलाया उठाया.
Even Jesus, which delivered us from the wrath to come.
और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है.
Now, I am assuming this translates into Hindi, but it is Hindi you're reading, isn't it?
Yeah, it's Hindi.
It's so, I'm assuming, you see, in my English Bible, four things from idols, from heaven, from the dead, from the wrath to come.
They are there. चार बातें अंग्रेजी बाइबल में जो हमारे हिंदी में पाते हैं कि वो मृतकों से, प्रकोप से, मूर्तियों से,
from the dead and from the wrath to come.
क्रोध से बचाया, प्रकोप से बचाया है.
Yeah. Okay, now, and from in Hindi is the same word, is it, each time?
Yes.
Okay, so in Hindi, from four times, char, four times.
Char bar Hindi mein ye se jo shabd hai wo aaya hai.
And the English word from, four times.
Aur angrezi mein bhi char bar.
In Greek, two different words.
Aur Yunani bhasha mein ye do alag shabd hain.
Ah. Now we look at the words that the Holy Spirit teaches. We'll look to see what Paul actually taught them, what he said to them.
अब देखिए पवित्र आत्मा शब्दों का कैसे प्रयोग करता है अपनी शिक्षा देने के लिए और
Because from can mean two different things here.
यहाँ पर से जो लिखा गया वो दो शब्दों से होकर बना है.
You turn to God away from idols.
तुम परमेश्वर की ओर मुड़े मूर्तियों को छोड़कर.
The little Greek preposition is apo. Apo is the word.
Apple शब्द का प्रयोग किया गया वहां पर
यूनानी
भाषा में.
Turn to God away from idols to serve the living and true God.
तो मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे.
And to wait for His Son out of heaven.
उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो.
Different word.
अलग शब्द.
Little word ek.
Ek. यूनानी शब्द एक का प्रयोग वहां किया गया है.
एक मीन्स आउट ऑफ.
एक का मतलब है से बाहर.
ओके, सो नाउ ऑलरेडी ही यूज टू डिफरेंट वर्ड्स.
यहां पर वो दो विभिन्न शब्दों का प्रयोग करता है.
अवे फ्रॉम आइडल्स,
मूर्तियों से दूर.
आउट ऑफ हेवन,
और स्वर्ग से बाहर जो निकल गया.
हुम ही रेज्ड, हियर्स द थर्ड फ्रॉम, out of the dead.
जिसे उसने मृत्यु से उठाया.
The little word ek again.
फिर ek यूनानी शब्द वहां पर हम पाते हैं.
Out of heaven.
स्वर्ग से निकाला गया.
Out of the dead.
मृत्यु से बाहर निकाला गया.
Even Jesus, which delivered us from the wrath to come.
यीशु जो हमें प्रकोप से बचाता है.
Which word? Which word is it? Is he delivered us out of the wrath to come? In which case the Christians are going to go through the tribulation. Or has he delivered us away from the wrath to come?
यहां पर ये दोनों शब्दों को हम तुलना करके देखें कि जो जो परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है उसमें से बाहर निकाला या उसमें से लेकर जा रहा है.
Which word is the Spirit of God used?
आत्मा कौन से शब्द का उपयोग किया है?
Not ek.
एक का उपयोग नहीं किया गया है.
नॉट आउट ऑफ,
निकाला गया हो ऐसा नहीं है.
एपल.
एपल शब्द का उपयोग किया गया है.
अवे फ्रॉम,
बाहर, दूर.
सो नाउ दीज थेसलोनियन बिलीवर्स हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम आइडल्स.
ये थेसलोनिके के विश्वासी मूर्तियों से दूर हो गए थे.
सर्व द लिविंग एंड ट्रू गॉड,
और जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे.
टू वेट फॉर हिज सन आउट ऑफ हेवन,
और उसके पुत्र का इंतजार कर रहे थे जो स्वर्ग से बाहर आने वाला था.
इवन हुम ही रेज्ड आउट फ्रॉम द डेड,
जिसको उसने मरोहों में से बाहर निकाला.
इवन जीसस,
वही यीशु,
हु हैज डिलीवर्ड अस away from the wrath to come. We'll never see it.
जिसने हमें उसके प्रकोप से दूर रखा है.
Now do you follow that, brethren?
देखिए भाइयों, इस सत्य को हम समझ ले.
Have you got that?
आप समझ गए क्या का हम कहने की कोशिश कर रहे
हैं?
आपको इसे जाकर सिखाना है.
Because those who don't understand it lose their hope.
क्योंकि जो इस सत्य को नहीं समझेंगे वो उस आशा को खो देंगे.
This is very serious.
ये बहुत गंभीर विषय है.
So you see the importance of getting back to those original words.
देखिए इसलिए मूल भाषा में उसके अर्थ को समझना कितना आवश्यक है हम यहां जान पाते हैं.
The answer is there in scripture.
क्योंकि हम उत्तर को पवित्र शास्त्र में ही पाते हैं.
Believers in the Lord Jesus Christ are not going to be here when the tribulation begins.
प्रभु यीशु मसीह में जो कोई भी है जब यहां पर महापीड़ा का दौर होगा वो उसमें से बिल्कुल नहीं जाएगा.
You might say perhaps you're in a holiday place and your little children are running around. There's a swimming pool there.
ऐसा सोच लीजिए कि आप पिकनिक के लिए गए हैं और वहां स्विमिंग पूल है आपके बच्चे उसके चारों ओर दौड़ रहे हैं.
And there's a big difference, isn't there, in taking your little one away from the pool or out of the pool.
ये दो शब्द इसमें से इसमें बहुत फर्क है कि बच्चों को उस पूल में से बाहर निकालना और बच्चों को पूल के पास से दूर ले जाना.
बिग डिफरेंस isn't it?
इसमें बहुत बड़ा फर्क है.
स्मॉल वर्ड्स बट वेरी बिग डिफरेंस.
लगभग एक ही समान लगते हैं लेकिन बहुत फर्क है.
सो देयर इट इज पॉल टॉट देम.
इसी सत्य को पॉल यहां कह रहा है.
दे हैव बीन टॉट दैट दे वर गोइंग टू गो टू हेवन एंड देन The tribulation period was going to begin.
उनको ये सिखाया गया कि देखो तुम यहां से निकलकर स्वर्ग पहुंच जाओगे उसके बाद यहां पर महापीड़ा का दौर होगा.
Now false teachers have come in.
अभी झूठे शिक्षक आ रहे हैं.
And because the devil, if he cannot stop me being saved, he wants to rob me of the joy and the hope and the victory of being saved.
शैतान के काम को देखिए. एक जगह पर वो मुझे उद्धार पाने से रोक नहीं पाया लेकिन अब ये कोशिश में लगा है कि मैं उद्धार के आनंद और उसके विजय को अपने जीवन में अनुभव ना करूं.
सो बाय द टाइम ही राइट्स द सेकंड लेटर.
इसलिए जब दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री वो लिख रहा है.
पॉल इज अवेयर दैट सम हैव टॉट वर्बली.
पौलुस को मालूम है कुछ लोगों ने अपने मुख से उन्हें कुछ सत्यों को सिखाया.
एंड सम हैव इवन रिटन लेटर्स and forged them as though they came from the apostle himself.
और कुछ लोगों ने पत्र भी उनको थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखा और ऐसा बनाया जैसे वो पौलुस के तरफ से आया है.
Telling lies.
झूठी बातें.
Trying to convince these dear believers that they were going to be punished in the tribulation period.
इन विश्वासियों को झूठी शिक्षा दी जा रही है कि तुम महापीड़ा के दौर से गुजरने वाले हो.
Now Paul beseeches them in chapter 2 of the second letter.
इसलिए दूसरे अध्याय में पौलुस इन विश्वासियों से निवेदन करता है.
On the grounds of the coming of the Lord Jesus and us being gathered unto him.
यीशु मसीह के आगमन के आधार पर और हम उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं इस सत्य के आधार पर.
He says, I don't want you to be shaken in any way on this.
वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी भी रीत से इसमें कमजोर पड़ जाओ.
Neither by spirit.
ना तुम किसी आत्मा.
That is some self-confessed prophet who comes along and says he's got a new word from the Lord.
ये उन भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा गया है जो अपने आप को भविष्यवक्ता समझते हैं और प्रभु की ओर से वाणी है कहकर हमारे बीच में आते हैं.
No, my word, that is men taking scriptures and distorting them just like the devil does.
फिर वो कहता है ना वचन के द्वारा ऐसे लोग जो वचन को लेकर उसको तोड़ मरोड़ के गलत रूप से शिक्षा देते हैं.
Or by letter as from us. If you've had a letter that says it's come from me, it's a lie.
वो कहता है ऐसा पत्र यानी कि कुछ पत्र जो तुम्हारे पास आया है जो मेरे नाम से आया है वो गलत है.
And this false teaching all had one emphasis.
और ये सारी झूठी शिक्षाओं के पीछे का एक ही जोर था.
The day of the Lord had already come.
कि प्रभु का दिन आ गया है.
Now the day of the Lord is that period of time we have discussed that starts at the rapture.
प्रभु के दिन के बारे में हमने शिक्षा पहले आज सुबह प्राप्त की कि वो जब विश्वासी उठा लिए जाएंगे तब उसकी शुरुआत होती है.
Goes right the way through the tribulation and millennium periods.
और वो इस महापीड़ा दौर से गुजरकर हजार वर्ष के जो जीवन उसमें भी उसमें गुजरता है.
And deals with events on earth.
और उस समय पृथ्वी पर सारी घटनाओं पर उसका नियंत्रण होता है.
That's the day of the Lord.
वो है प्रभु का दिन.
The day of the Lord is an Old Testament truth as well as a new.
प्रभु का जो दिन है वो एक पुराने नियम की सच्चाई है साथ में नए नियम में भी एक सच्चाई है.
Isaiah first spoke of it in chapter 2.
अशया नबी ने अध्याय 2 में सबसे पहले प्रभु के दिन के बारे में कहा.
So many of the Old Testament prophets spoke about this day of the Lord, Jehovah.
इसलिए बहुत से पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के दिन यहोवा के दिन के बारे में कहा है.
What was happening to the nation? The nation was having so much trouble.
इसराइल पर क्या गुजर रहा था. इसराइल बहुत परेशानियों से गुजर रहा था.
The nation that should have been at the head of the nations is being disintegrated and abused by the nations.
इसराइल जो संसार के सारे देशों का नायक होना चाहिए था वो बिखर गया, टूट गया है और सताया जा रहा है.
And prophet after prophet came along.
और हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को, नबियों को एक के बाद खड़ा किया.
And he talked about the day of the Lord.
और उन नबियों ने उनको उसने प्रभु के दिन के बारे में सिखाया.
The day of the Lord's fierce anger.
और प्रभु के दिन का जो भयंकर क्रोध है.
And so often the children of Israel thought, well, it's right that God should be angry with the Gentiles.
और कई बार इसराइली ये सोचते थे कि प्रभु को तो अन्य जातियों के ऊपर अपने क्रोध को दिखाना चाहिए.
But the prophets were saying no.
लेकिन भविष्यवक्ताओं ने कहा नहीं.
God will deal with the Gentiles in the day of the Lord.
प्रभु के दिन में यहोवा इस अन्य जातियों के ऊपर व्यवहार करेगा.
But more than anything, he's going to deal with you.
लेकिन उससे भी बढ़कर उस समय वो तुम्हारे साथ न्याय करेगा.
The day of the Lord is a period of judgment upon Israel.
और प्रभु का दिन जो है वो इस्राएलियों के ऊपर न्याय का समय होगा.
The prophet Joel spoke. Joel.
जोएल ने इस प्रकार से कहा था.
प्रोफेट जोएल स्पोक एंड ही सेड टू देम इन चैप्टर 1 बिकॉज़ दे वर सफरिंग अ ग्रेट प्लेग ऑफ लोकस्ट्स.
जोएल ने उनके बारे में कहा था क्योंकि वो टिड्डियों की एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे थे.
एंड दे सेड ओह सो मच डिस्ट्रेस.
उन्होंने कहा कि कितने तकलीफ इन टिड्डियों के कारण.
वी हैव नो फूड.
हमें खाने के लिए भी भोजन नहीं.
द लैंड इज स्ट्रिप्ड बेयर. The land is stripped.
और जो हमारी भूमि है उसको टिड्डियों ने खा लिया है सब कुछ.
एंड इन चैप्टर 2
अध्याय 2 में
ऑफ हिज लिटिल प्रोफेसी
और जोएल ने इस छोटे से भविष्यवाणी में
ही देन सेज टू देम नाउ लुक द इवेंट्स ऑफ टुडे आर टेरिबल.
उन्होंने कहा कि आज के जो घटनाएं ये तो बहुत भयानक है.
यू थिंक इट कुडंट गेट वर्स देन इट इज टुडे.
क्या तुम सोचते हो कि इससे भी बुरा और कुछ हो नहीं सकता.
वेल इट विल.
लेकिन होगा.
बिकॉज देयर इज द डे ऑफ द लॉर्ड कमिंग.
क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है.
And God is going to deal with you.
Oh, प्रभु उस दिन में तुम्हारे साथ न्याय करेगा.
And the nation refused to believe that the covenant-keeping God Jehovah would ever deal with them in this way.
लेकिन प्रभु के लोगों ने कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा.
But He will.
लेकिन वो करेगा.
And the day of the Lord for Israel divides between the tribulation period and the millennium period.
और इसराइलियों के लिए प्रभु का जो दिन है वो महापीड़ा काल और हजार बरस का जो राज्य है उस समय होगा.
In the tribulation period he judges them and allows Gentiles to oppress them.
महापीड़ा काल में वो उनका न्याय करेगा इसराइलियों का और अन्य जातियों को उन्हें सताने का अवसर देगा.
For one reason.
एक कारण के.
He is going to use all that judgment and fear to drive Israel to repentance.
वो इन सारे न्यायों को, इन भयों को उनके जीवन में इसलिए भेज रहा है ताकि इसराइल परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ लौट जाए.
He is going to oppress them until they break their proud spirit and they turn to him with a new and an open heart.
उन पर इतना सताव आएगा कि उनका जो गर्व से भरा हुआ दिल है वो टूट जाएगा और वो खुले मन से प्रभु के पास आएंगे.
Israel looks to the Holocaust of 1939 to 1945.
1945 तक जर्मनी में उनको जिस प्रकार से खत्म किया गया था उस दृश्य को वो देखते हैं.
6 million Jews exterminated by Nazi Germany.
और करीब 6 लाख जो यहूदी हैं, 60 लाख यहूदी हैं, उनको वहां पर नाजियों ने मार दिया.
They say it couldn't get worse than this.
उन्होंने कहा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता.
It will.
लेकिन इससे भी बुरा आने वाला है.
In that great and terrible day of the Lord,
परमेश्वर के उस भयंकर न्याय के दिन में,
God has left them to their ways.
आज परमेश्वर ने उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार छोड़ दिया.
Just as He's left man to His ways in man's day,
जैसे मनुष्य के दिनों में मनुष्य को अपनी मर्जी के अनुसार,
man's day is going to finish.
मनुष्य का दिन भी समाप्त होने वाला.
And the Lord is going to say, now this is how I rule.
और उसके बाद प्रभु एक दिन कहेगा अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं.
And the tribulation period will be desperate, desperate hardship for Israel.
और जो महापीड़ा का दौर है इसराइलियों के लिए इतना भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा.
Is God doing this because he has forsaken his covenants with his people?
क्या परमेश्वर ये इसलिए कर रहा है कि उसने अपने वाचा को उनके प्रति जो था उसे भुला दिया है?
No.
नहीं.
God is going to fulfill them all.
परमेश्वर अपनी वाचा को उनके जीवन में और पूरा करने जा रहा है.
That's what the millennium is about.
और ये हजार बरस का जो राज्य है वो उसी के बारे में दिखाता है.
But he must deal with Israel in righteousness.
लेकिन उन्हें इसराइल के साथ न्याय में पेश आना जरूरी है.
And they must learn who God is.
और उनके लिए आवश्यक है कि वो इस सत्य को जान ले कि वो यहोवा परमेश्वर कौन है.
Our brother was speaking to us of the church as the bride of Christ.
आज हमारे भाई ने हमें याद दिलाया कि जो कलीसिया है प्रभु की वधु है.
We're familiar with that truth, maybe.
हम इस सत्य के वाकिफ होंगे.
Are you familiar with the truth that Israel is the wife of Jehovah?
क्या आप इस सत्य से वाकिफ हैं कि इसराइल परमेश्वर का प्रभु का पत्नी है?
It's what the Old Testament teaches.
क्योंकि वधु होकर कर पुराना नियम सिखाता है.
Prophet Hosea had a very strange life.
होशेया का जिंदगी को देखेंगे तो बड़ा अजीबोगरीब था.
God said to him, "You go and take a woman who is an immoral woman. Take her as your wife."
परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम जाओ एक वैश्या के साथ को तुम अपनी पत्नी बनाओ.
And the man had to live a life of tears and shame with this dreadful woman.
और उस परमेश्वर के दास को इस वैश्या के साथ बड़ा ही दुख और तकलीफ का जीवन बिताना पड़ा.
It was a living picture. To the nation of Israel, how they were behaving against their husband Jehovah.
वास्तविक रूप से परमेश्वर इस्राएल को उनके वास्तविक रूप को दिखा रहा था कि वो अपने परमेश्वर से कैसा व्यवहार कर रहे हैं.
And Israel has been many times unfaithful to Jehovah.
और इतना ही नहीं, इसराइल जो है यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा कई बार.
That's why you read expressions such as My people have gone a whoring after false gods.
इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं कि मेरी प्रजा अन्य देवी देवताओं के पीछे बुरे बुरे काम करते हुए चले गए.
It was not seen by God as religious failure.
यहाँ पर हम परमेश्वर को उनका आत्मिक पराजय के रूप में नहीं देखते.
It was seen by God as marital infidelity.
परमेश्वर उन किसकी तुलना अपने विवाह में विश्वास योग्यता ना रखने के समान कहता है.
They're going after whores, these false gods.
मूर्तियों के पीछे वैश्यागमन कर रहे हैं प्रभु कहता है.
How did the Lord Jesus speak to the Pharisees?
फरीसियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
Matthew chapter 12.
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय.
We would see a sign.
हम एक चिन्ह देखना चाहते हैं.
A wicked and adulterous generation seeks after a sign.
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक दुष्ट और व्यभिचार में पड़ा हुआ एक जाति चिन्हों को ढूंढ रहा है.
He was saying this isn't a religious problem, this is a problem of marital fidelity.
परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि ये एक धार्मिक गलती है, समस्या नहीं है, लेकिन विवाह में आई हुई समस्या है.
So unfaithful a wife Israel has been.
इसराइल एक वधु के रूप में, पत्नी के रूप में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं था.
But God loves her.
लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम करता है.
And he wants her to love him.
और परमेश्वर चाहता है कि वो उससे प्रेम करे.
And he's going to use the tribulation to bring Israel to its very knees.
और परमेश्वर महापीड़ा के दौर का प्रयोग करने जा रहा है, उपयोग करने जा रहा है कि इसराइल अपने घुटनों पे आ जाए.
And when their proud heart is broken.
और जब उनका गर्व से भरा हुआ हृदय टूट
जाए. And they acknowledge their sin.
और वो अपने पापों को स्वीकार करेंगे.
And they acknowledge their Messiah.
और वो अपने मसीहा को स्वीकार करेंगे.
Then God is going to give the nation a new heart.
तब परमेश्वर इसराइल को एक नया हृदय देगा.
A heart of flesh.
वो मांस का बना हुआ हृदय.
एंड शी विल लव हिम.
और इसराइल उससे प्रेम करेगी.
एंड शी विल बी रिस्टोर्ड.
और उसे प्रभु वापस ले आएगा.
एंड शी विल बी क्लेंज्ड.
और प्रभु उसे शुद्ध कर देगा.
व्हाट अ वंडरफुल फ्यूचर फॉर इसराइल.
इसराइल के लिए कितना सुंदर भविष्य प्रभु ने रखा है.
देन गॉड राइटियसली विल फुलफिल ऑल द कोवेनेंट्स ही हैज मेड विद दैट नेशन.
और उसके बाद परमेश्वर ने इसराइल के साथ जो भी वाचा किया है उसको क्रमबद्ध पूरा करता जाएगा.
All that in the day of the Lord.
और वो सारी बातें प्रभु के दिन में पूरा होने वाला है.
Paul taught the Thessalonians about some of these things.
पौलुस ने तस्सलुनीके के विश्वासियों को इन सत्यों से अवगत करवाया.
But they believed now that the day of the Lord had started, even though the Lord hadn't come to the air. They thought that they were in the day of the Lord.
लेकिन थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने यह सोच लिया कि प्रभु का दिन आ गया, भले प्रभु मध्याकाश में नहीं आए हैं.
Now Paul says in 2 Thessalonians 2, he says, "Listen, I'll show you why that cannot be."
और दूसरा थिस्सलुनीकियों में प्रेरित पौलुस उनसे कहता है, निश्चित रूप से यह सत्य नहीं है.
He shows them in that chapter how that the devil is preparing to bring his man onto the world stage.
दूसरे तिस्सलुनीकियों में प्रेरित पौलुस ने याद दिलाता है कि शैतान कैसे अपने मनुष्य को, अपने पुरुष को पृथ्वी में लाने की कोशिश कर रहा है.
The man of sin,
पाप से भरा वो मनुष्य.
The beast,
जो जी जंतु है.
And the devil is wanting to get his man onto the world scene.
और शैतान इस प्रयास को कर रहा है कि वो उसके मनुष्य, उसका पुरुष को पृथ्वी पर दिखाए.
As is Paul to the Thessalonians.
जैसे पौल उसने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से कहा.
The devil might want to bring his man into the world.
शैतान कोशिश कर रहा है कि अपने पुरुष को इस पृथ्वी पर को दिखाए.
But he said God is preparing a man as well.
लेकिन वो कहता है परमेश्वर भी एक पुरुष को तैयार कर रहा है.
That's the truth of Ephesians chapter 4.
जैसे हमने एफिसियों के इसके चौथे अध्याय में देखा है.
He is bringing to maturity one man. The head is Christ and the body is the church.
वह एक मनुष्य को संपूर्ण करके ला रहा है जिसका सिर यीशु मसीह है और जिसका शरीर कलीसिया है.
So the devil is preparing a man.
हम देखते हैं कि शैतान एक मनुष्य को तैयार कर रहा है.
And God also is preparing a man.
और दूसरी जगह देखिए परमेश्वर भी एक मनुष्य को तैयार कर रहा
है. And God is saying to the devil.
और परमेश्वर शैतान से कह रहा है.
I'm not going to allow you to reveal your man.
मैं तेरे मनुष्य को लोगों को संसार के सामने दिखाने की अनुमति नहीं दूंगा.
Until my man is complete.
जब तक कि मेरा मनुष्य पूरा ना हो जाए.
And until God's man is complete and taken to heaven.
जब तक परमेश्वर का मनुष्य संपूर्ण ना हो जाए और स्वर्ग में उठा लिया ना जाए.
The devil cannot reveal his man.
शैतान अपने मनुष्य को प्रकट नहीं कर पाएगा.
Paul says to the Thessalonians, listen. The evidence that you are not in the day of the Lord.
प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को कहता है कि यह सबूत कि हम प्रभु के दिन में नहीं है.
Is that you are still on earth?
उसका ये है कि तुम अभी भी पृथ्वी पर हो.
The two things can't go together.
ये दो बातें एक साथ नहीं जा सकती.
Remember, he says, I told you back in the first letter.
दोनों कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले पत्री में याद दिलाया.
I explained to you in what we know as chapter 4.
जैसे मैंने तुम्हें चौथे अध्याय में याद दिलाया.
The truth that our beloved brother Cyril has brought to us this morning. The glory of the Lord to the air.
जिन सत्यों को हमारे भाई ने आज सुबह हमें याद दिलाया कि प्रभु मध्याकाश में आएगा.
But then in chapter 5 he speaks about the day of the Lord.
और उसके बाद पांचवें अध्याय में प्रभु के दिन के बारे में कहता है.
Coming as a thief in the night.
वो चोर जैसे रात में आते वैसे आएगा.
He says, brethren, you know these things. I've taught them to you.
भाइयों तुम ये सब जानते हो. मैंने तुम्हें इसकी शिक्षा दी है.
Why have you let these men overthrow your faith? Why have you let these false teachers overthrow your faith?
क्यों तुमने इन झूठे शिक्षकों को अनुमति दी कि तुम्हारे विश्वास में तुम्हें गिरा दे?
Why have you let them deceive you?
क्यों तुमने उन्हें धोखा देने का अवसर दिया है?
Stand on the truth.
सत्य पर खड़े रहो.
Those things that have been revealed to you.
ये बातें जो तुम्हें प्रकट किया गया है.
We are not waiting for judgment.
हम न्याय के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं.
We are waiting for the Lord out of heaven.
हम प्रभु स्वर्ग से उतर कर आए उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं.
One who's promised he will take us away from the wrath to come.
जिसने हमसे वादा किया है कि क्रोध से हमें बाहर निकाल कर लेकर जाएगा.
What did he taught them in chapter 5?
उसने हमें अध्याय 5 में क्या सिखाया?
Verse 9.
और पद 9.
God has not appointed us to wrath.
क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं.
How much more clearly do we want that stated?
इससे भी बढ़कर हमें साफ रूप से कैसे कहा समझ सकते हैं?
God has not appointed us to wrath.
क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं.
But to obtain salvation from that wrath by our Lord Jesus Christ.
परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है.
Who died for us.
जो हमारे लिए मर गया.
That whether we wake or sleep, whether we are alive or dead, we should live together with him.
कि हम जागते या सोते हो, हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहे.
Wherefore comfort yourselves together.
इसलिए इन बातों के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करो.
Edify one another.
एक दूसरों को धीरज दो.
Is that not what we're doing, brethren?
क्या भाइयों हम इस काम को नहीं कर रहे?
Are we not comforting one another?
क्या हम एक दूसरे को धीरज नहीं दे रहे?
The word means exhort as well.
इसका ये मतलब है हम प्रोत्साहित करें.
So we are We are cheering the hearts of one another.
हम एक दूसरे के हृदय को आनंद पहुंचा रहे हैं.
And we are exhorting one another in the light of that day to live as we should.
और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्रभु के दिन के उस ज्योति में प्रकाश में हम एक दूसरे आगे बढ़े.
And we are edifying one another.
और हम एक दूसरे को बल दे रहे हैं.
How are we doing that?
हम ये कैसा करते हैं?
We are doing it by carefully discerning what the word of God teaches.
ये हम तब करते हैं जब हम परमेश्वर का वचन को ध्यान से देखते हैं कि वचन हमें क्या सिखा रहा है.
The difference between the day of Christ and the day of the Lord is not some academic difference.
मसीह का दिन और प्रभु के दिन में कोई बड़ा बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने वाला फर्क हम नहीं पाते.
It's not some little detail that well, it doesn't matter if you want to talk about it or not.
और ये कोई ऐसा बहुत विस्तृत कोई विवरण नहीं है जिसके बारे में हमें बात करना या नहीं करना है.
You see the difference in the Thessalonian assembly.
थिस्सलुनीके के कलीसिया में ये दोनों फर्क हम देख लेते हैं.
When they rightly understood prophetic things.
जब उन्होंने भविष्यवाणी के बातों को सच्चे रूप से समझा.
They lived in the good of their hope. They lived in the good, the enjoyment of their hope.
तब वो आशा के आनंद में अपने जीवन को बिताते हैं.
When their view was distorted and spoiled by false teaching.
लेकिन जब झूठे शिक्षकों ने उनको जो सत्य सिखाया गया था उससे उन्हें बहका दिया.
The hope was lost.
उनकी आशा चली गई.
When the hope was lost, the joy was lost.
जब आशा चली गई तो उनका आनंद चला गया.
When the joy was lost, the zeal was lost.
उनका जब आनंद चला गया कुछ करने का जो जोश है वो चला गया.
See how the devil wants to do his work.
देखिए शैतान अपने काम को करना आप चाहते हैं.
See why you need to know the difference between the day of Christ and the day of the Lord.
देखा आपने आपको हमें क्यों ये जानना जरूरी है कि प्रभु का दिन और मसीह का दिन में क्या फर्क है.
The correct order of prophetic things.
कि भविष्यवाणी की बातों का जो सही क्रम है वो क्या है.
Not just know them.
उनको सिर्फ जानना ही
नहीं. But be able to go to the Bible.
लेकिन बाइबल में हम वापस जाएं.
And show them.
और उन्हें दूसरों को दिखाएं.
Because you and I, by the grace of God, have got to go and teach fellow believers.
क्योंकि मैं और आपको, मुझको और आपको, अनुग्रह में आगे जाकर अन्य विश्वासियों को इसकी शिक्षा देना आवश्यक है.
Not only teach what's right.
ना केवल जो सही है उसको सिखाए.
But take the teaching of those who are wrong and show why it's wrong.
लेकिन जो गलत शिक्षा दे रहे हैं उनकी शिक्षाओं को ले और हम अपने प्रियजनों को सिखाएं कि वो क्यों गलत है.
And we've seen the effect of what happens if this teaching is not done.
और हमने देखा कि अगर ये शिक्षा नहीं दी जाती है तो विश्वासियों के जीवन में क्या होगा.
Don't say to me, brother, I come from an assembly of simple believers. We don't need this.
हम मुझसे आप ये ना कहे कि देखो भाइयों हमारे कलीसिया के विश्वासी बहुत साधारण विश्वासी हमें यहाँ ये शिक्षा देने की जरूरत नहीं है.
Thessalonians were first generation Christians.
थिस्सलुनीकिया के विश्वासी पहले जो युग के या पहले पीढ़ी के विश्वासी थे.
All freshly saved out of idolatry.
सब मूर्ति पूजा को छोड़कर यीशु मसीह के उद्धार में नए नए आए थे.
They needed it.
उनको अगर उसकी आवश्यकता थी.
So we all need it.
इस हमें भी इसकी आवश्यकता है.
The day of Christ, things in heaven.
मसीह का दिन स्वर्ग में होने वाली बातें.
The day of the Lord, things on earth.
प्रभु का दिन पृथ्वी पर होने वाली बातें.
The day of the Lord cannot begin until the saints are in glory.
प्रभु का दिन तब तक नहीं शुरू हो सकता जब तक उसके जो संत हैं उस स्वर्ग में यहां चले जाए.
One final thought and then I'll sit down.
एक अंतिम विचार आपके सामने रखकर बैठना चाहूंगा.
Many years ago I spent 25 years in the Royal Air Force.
25 साल मैं एयरफोर्स में अपनी जिंदगी बिताया है.
I was doing my flying training in the middle of England.
मैं इंग्लैंड में अपने उड़ान की शिक्षा प्राप्त कर रहा था.
So I was for that period in fellowship in a small assembly there.
और जब मैं ये शिक्षा प्राप्त कर रहा था एक छोटी सी कलीसिया में संगति रखता था.
By coincidence.
और ये इत्तफाक से.
Or maybe by the ordering of the Lord.
और या प्रभु के इच्छा के अनुसार.
There was a man in that assembly.
एक भाई था जो उस कलीसिया में.
Who had been in the navy with my father.
जो मेरे पिताजी के साथ नेवी में काम करते थे.
And for all those years, he had believed that the saints would go through the tribulation.
और उन सारे उतने वर्ष वो ये विचार रखते थे कि विश्वासी इस महापीड़ा के दौर से गुजरेंगे.
There was no joy about the man. No joy at all.
उस व्यक्ति के जीवन में कोई आनंद हम नहीं देख पाते.
So many times we discussed it, hours in the night.
कई बार रात को बैठकर हमने इसके बारे में विचार किया.
One day we were speaking about the fact that the day of the Lord is the outpouring of God's wrath upon this world.
एक दिन हम बात कर रहे थे कि प्रभु का दिन वो है जब परमेश्वर का न्याय भयंकर रूप से इस पृथ्वी पर आएगी.
God is going to declare war on this world in the day of the Lord.
और प्रभु के दिन में परमेश्वर पृथ्वी में युद्ध छेड़ देगा.
It's very solemn.
और ये बहुत पवित्र एक बात है,
गंभीर बात है. About to leave this brother's house one night,
और एक रात मैं इस भाई के घर में गया.
I said, brother, I've been enjoying the truth of 2 Corinthians 5.
भाई मैं दूसरा कुरिन्थी उसका पांचवें अध्याय में जो आनंद का विषय लिखा है उसको मैं मनन कर रहा था.
Paul says we are ambassadors for Christ.
हम यीशु मसीह के राजदूत हैं.
An ambassador is the representative of one nation in another nation.
एक राजदूत जो होता है एक देश का प्रतिनिधि होता है दूसरे देश में.
We are representatives of heaven.
हम इस पृथ्वी पे स्वर्ग के राजदूत हैं.
Ambassadors for Christ.
हम यीशु मसीह के राजदूत हैं.
I said, I have just been reading a history book as well.
मैंने उनसे कहा मैं इतिहास का एक पुस्तक पढ़ रहा था.
About the beginning of the Second World War in Europe.
जब यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया.
And we issued an ultimatum to Germany.
और हमने जर्मनी के विरोध में जर्मनी के सामने एक ऐलान किया है.
Take your troops out of Poland.
कि पोलैंड में से तुम अपनी सेना को वापस खींच लो.
Or we will be at war.
और या नहीं तो हम तुम्हारे साथ युद्ध कर लड़ेंगे.
As the war clouds were gathering.
और जैसे युद्ध की बातें इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में चल रही थी.
The British government was saying to its people in Germany, come home.
ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने जर्मनी में जितने इंग्लैंड के निवासी थे उनसे कह रहे थे तुम वापस आ जाओ.
Businesses came home.
और जितने बिजनेसमैन थे वो वापस आ गए.
Families came home.
परिवार वापस आ गए.
Until the only person British left in Germany really was the ambassador.
अंतिम व्यक्ति जो ब्रिटिश नागरिक जर्मनी में बच गया था वो था वहां का राजदूत.
And the last thing that happened before war was declared.
और युद्ध के ऐलान होने के पहले पहली बात जो वहां हुई थी वो ये है.
The ambassador was withdrawn.
इंग्लैंड के राजदूत को इंग्लैंड ने जर्मनी से वापस बुला लिया.
That's the rapture, brethren.
भाइयों यही है रैप्चर या उठा लिया जाना.
God is going to take home to their native place the ambassadors of Christ.
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राजदूतों को अपने मूल स्थान में स्वर्ग में लेकर जाने वाला है.
Would we begin dropping bombs with our ambassador still in that country?
क्या हम अपने राजदूत जब उस देश में हैं हम वहां पर बम गिराना शुरू कर देंगे?
Will God unfold His wrath with His believing people still on earth?
क्या परमेश्वर अपने न्याय के कटोरे को जब उसके पर विश्वास करने वाले उसकी प्रजा इस पृथ्वी पर तब गिराएगा?
No, brethren, the ambassadors are recalled.
नहीं, कभी नहीं हो सकता. उसके सारे राजदूत वहां पहुंच जाएंगे.
And then, and only then, does divine judgment fall.
और उसके बाद परमेश्वर का न्याय गिरेगा.
The day of the Lord.
और ये है प्रभु का दिन.
That night as I left his home,
उस रात को जब मैं उस भाई के घर से
we had this conversation on his doorstep.
हम उनके घर के दरवाजे पर ये हमारे बात में विचार विमर्श चल रहा था.
The dear man put his arms around me.
उस भाई ने मेरे मुझसे मुझे गले लगा लिया.
And his face was wet with tears.
और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी.
He said, "Brother, the Lord has delivered me from it."
उसने कहा भाई प्रभु ने मुझे इसमें से बाहर निकाल दिया.
27 years in the grip of false doctrine.
27 वर्ष तक झूठी शिक्षा के अधीन था.
Delivered from it.
प्रभु ने उसे उसमें से छुड़ा लिया.
The hope restored.
और उसकी आशा वापस आ गई.
Joy regained.
आनंद जीवन में आ गया.
This isn't theory we're discussing, brethren.
प्रियो ये कोई सिद्धांत नहीं है जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं.
We must know the difference between the day of Christ and the day of the Lord.
मसीह के दिन और प्रभु के दिन के बीच में जो फर्क है उसको हमें सीखना है समझना आवश्यक है.
Thank you. God bless his word.
प्रभु इस वचन को आशीष करके हमारे जीवन में दे.